सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य शुक्ला और आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 के प्रमुख निष्कर्षों पर। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
श्रोताओं, नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आज पांचवा दिन था। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत हम इसी से करना चाहेंगे। प्रफुल्ल जी, आपकी पहली टिप्पणी क्या रहेगी इस पूरे आयोजन पर?
ये भारत के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। अभी तक विश्व भर में जितने भी जिसको मल्टीलैटरल या बहुराष्ट्रीय स्तर के प्रयास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हुए थे, इससे पहले ब्लेसली पार्क में हुआ था या सेउल में हुआ था या पेरिस में हुआ था या किगली समिट्स हुआ था, ये सारे तथाकथित विकसित देशों में हुए समिट्स, पहली बार पीपल प्लेनेट एंड प्रोग्रेस इन तीनों आयामों को ध्यान में रखते हुए और वो भी पूरी भारतीय अवधारणा के साथ, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस अवधारणा के साथ भारत ग्लोबल साउथ की पहली ऐसी इंपैक्ट समिट आयोजित कर रहा है। अभी तक क्या था कि हर कोई इसके केवल टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स पर चर्चा करते थे और इस तरीके से कौन लीड लेगा, डेटा सॉवरेनिटी, ये सारे प्रश्न तो यहाँ पे भी चर्चा में हैं। लेकिन जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, उद्घाटन भाषण में कहा, जिसमें मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला था, कि ये भय का नहीं, हम एआई को जो है वो हमारे भाग्य के रूप में, और उसके आधार पर उन्होंने जो एक मानव की संकल्पना दी, एक मॉरल और एथिकल सिस्टम होना चाहिए, अकाउंटेबल गवर्नेंस होना चाहिए, नेशनल सॉवरनिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबल और इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम्स होनी चाहिए। इन पांच आयामों को लेकर भारत ने एक अपना विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की केवल ना जो तकनीकी पक्ष है उसको लेकर, बट उसका जो व्यावहारिक पक्ष है, जो मानव केंद्रित पक्ष है, मानवीय सभ्यता पर होने वाले परिणामों का पक्ष है, उसको लेकर भी कहा है। मुझे लगता है ये भारत के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है और इस संदर्भ में एक व्यापक मंथन भारत में आकर विश्व के सारे धुरीण कर रहे हैं, चाहे वो विश्व के नेता हो, चाहे वो सीईओज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हो या स्टार्टअप्स और इनोवेशन में काम करने वाले यंगस्टर्स हो। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मौका है जो आने वाले समय का, विश्व का जो खाका है उसमें एआई के परिणामों को समझने के लिए भी और उसके अनुसार अपनी नीतियां बनाने के लिए।
बिल्कुल, आपने बात की कि कैसे पहली बार किसी ग्लोबल साउथ के देश में इस तरह के बड़े आयोजन एआई पर का होना संभव हुआ है और भारत ने वो करके दिखाया है। प्रधानमंत्री का भी आपने जिक्र किया कि कल उन्होंने कहा कि कैसे भारत और पूरा विश्व अब एक जिम्मेदारी पूर्वक एआई का उपयोग करे और उसकी तरफ बढ़े। साथ ही प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में एक बात और कही थी, उन्होंने कहा कि हमें एआई का लोकतंत्रीकरण करना होगा, इसे खास करके जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनके समावेशन और सशक्तिकरण का एक उपकरण बनाना होगा। सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री को और फिर उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे।
एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा, इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में।
प्रफुल्ल जी, हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि कैसे अब ग्लोबल साउथ के लिए बहुत जरूरी है कि लोकतंत्रीकरण हो एआई का। आप क्या देखते हैं, ये जो आज का या हम कहें ये पिछले पांच दिनों का आयोजन है, ये कैसे एक रूपरेखा तैयार करता है पूरे विश्व के लिए कि कैसे वो अब ग्लोबल साउथ के देशों से सिर्फ डेटा लेना बल्कि उन देशों को दे भी कुछ?
अभी तक क्या रहा है कि सारी टेक्नोलॉजी जो कोल्ड वॉर के समय विकसित हुई और उसके आधार पर उसका एक तरीके से सामरिक प्रयोग, डेटा मोनोपोली और डेटा मैनिपुलेशन, डेटा एक तरीके से मोबिलाइजेशन, तीनों लेवल पर इसका उपयोग और खास करके दक्षिण के सारे देशों को इसमें केवल एक ग्राहक के रूप में देखा गया। चीन ने अपना डीपसीक डेवलप करने के बाद इस पर बहुत सारी चर्चाएं फिर नए कोल्ड वॉर के संदर्भ में शुरू हुई। अब हमको जो इस एआई समिट के कारण जो ध्यान में आ रहा है कि एक, भारत ने अपने तीन फाउंडेशनल एआई और उसमें भी जो हमने सर्वम का सबसे बड़ा प्रयोग देखा कि जिसमें भारत की 12 भारतीय भाषाओं में एक समानांतर भाषांतर करने की प्रक्रिया इसमें हमको दिखने वाली है। उसके साथ साथ हमने देखा कि एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, स्किलिंग हो, जो ग्लोबल साउथ के इमीडिएट कंसर्न्स है उसमें एआई के एप्लीकेशन को लेकर हो, तो भारत इसमें एक नेतृत्व की भूमिका में एक तरीके से आता हुआ दिख रहा है। इसमें अभी भी हार्डवेयर को लेकर हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कम से कम हम डेटा सॉवरनिटी, डेटा सिक्योरिटी और उसके साथ साथ उसमें इंक्लूसिविटी, इन तीनों एस्पेक्ट्स को लेकर हम बहुत सारे देशों को साथ में ला पाए हैं। और आज जैसे कि संकेत मिले हैं कि जो डिक्लेरेशन पारित हुआ है उसमें ईयू का भी एक तरीके से उसको एंडोर्समेंट मिलने वाला है, तो मैं मानता हूं कि एक शुभ संकेत है कि ऐसे में जो सारा का सारा एआई का एक तरीके से मानवीय जीवन पर जो भी परिणाम होने वाले हैं उसमें एक ग्लोबल रेगुलेटरी मैकेनिज्म इस एआई पर के मशीन जो है वो मानव को नियंत्रित ना करे, मानव जो है वो मशीन के ऊपर उसकी उपयोगिता मानवीय जीवन को और सुलभ बनाने में भय विरहित होकर काम कर सके, तो इस दिशा में हम ग्लोबल साउथ का एक तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं ऐसा स्पष्ट रूप से इस समय के माध्यम से दिख रहा है।
प्रफुल्ल जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आज जो भारत सरकार की नीति है एआई को लेकर खास करके, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है बल्कि जो निजी क्षेत्र है उसको भी आगे आना होगा बहुत बढ़ चढ़कर, इस पूरे आयोजन ने कैसे एक बहुत बड़ी शक्ति दी है अपने निजी क्षेत्र को कि वो भी आगे आए। भारत सरकार अपनी नीतियों के साथ बहुत स्पष्ट है और वो उनको सहयोग करना चाहती है और निजी क्षेत्र इसमें शामिल हो और इसका नेतृत्व करे।
स्वाभाविक सी बात है कि मूलतः सारी की सारी डिजिटल स्पेस पे मोनोपोली ये निजी क्षेत्र की रही है। सरकार इसमें सहायभूत जरूर हो सकती है, सरकार इसमें मिलजुल कर कुछ नियम कानून जरूर बना सकती है, लेकिन चाहे वो एआई के एप्लीकेशन की बात हो, उसमें एक आरएनडी करने की बात हो, उसके आधार पर पूरा का पूरा अलग अलग क्षेत्रों में जैसे लीगल फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका जो परिणाम होने वाला है उसको लेकर क्या होगा, इसको यदि हम निजी क्षेत्र को लेकर काम नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी तो विकसित होगी लेकिन उसका जो नीतिगत पक्ष है वो पूरी तरीके से छूट जाएगा। तो मैं मानता हूं कि ये इस समिट में एक तरफ शिखर स्तर पर 20 देशों के शीर्षस्थ नेतृत्व आए हैं, 118 देशों का कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व इसमें रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं मानता हूं कि लगभग सारे महत्वपूर्ण कंपनियों के जो सीईओज इसमें आए हैं और उसके साथ साथ जो यंग रिसर्चर्स है, जो यंग स्टार्टअप और इनोवेटर्स है, जो इसको व्यावहारिक रूप में मानवीय जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए अप्लाई करते हैं, ये सारे लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं और इसमें आने वाले समय में प्राइवेट फील्ड निजी क्षेत्र की भूमिका कैसे रहेगी, निजी क्षेत्र इसको किस रूप में इन सारे डिक्लेरेशन को एडेप्ट करेगा, क्योंकि इसका कार्यान्वयन जो होना है एआई के संदर्भ में अमेरिका के साथ भी अभी एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्योंकि इसका जो हार्डवेयर वाला पक्ष है, जो चिप बनाने वाला पक्ष है, उस पर भी एक मोनोपोलाइजेशन का खतरा जरूर है। उसके बारे में भी आज एक जॉइंट स्टेटमेंट बिल्डर्स का, मतलब जो एआई इनोवेशन का एक्चुअल काम कर रहे हैं, कोडर्स का, क्रिएटर्स का, स्टार्टअप्स का, इसके साथ साथ इन सारे इसमें काम करने वाली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का एक कोलैबोरेटिव पक्ष इसमें से निकल कर आ रहा है। उस संदर्भ में मुझे लगता है कि निजी क्षेत्र की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है और सरकार इसको एक तरीके से कानून बनाने की प्रोसेस में तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, लेकिन उसके साथ साथ जब तक निजी क्षेत्र का ट्रस्टेड कोलैबोरेशन नहीं होगा, इसमें ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होगा, सिक्योरिटी मेजर्स जो है उसके संदर्भ में व्यापक रूप में नहीं सोचेंगे, तब तक मुझे लगता है कि सही मायने में हम इसका जिस संदर्भ में सोच रहे हैं कि सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो, वो नहीं हो पाएगा, तो उस संदर्भ में इस निजी क्षेत्र की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है।
प्रफुल्ल जी, आपने पैक्स सिलिका की बात की, हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने श्रोताओं को ये जानकारी देना चाहूंगा कि पैक्स सिलिका पर आज आकाशवाणी समाचार ने एक विशेष कार्यक्रम बनाया है। अगर आप इस कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर जाकर इसका लिंक वहां है, आप सुन सकते हैं। इसमें हमने बहुत विस्तार से बताया है इस पूरे घोषणा पत्र पर जो आज नई दिल्ली इंडिया AI शिखर सम्मेलन में हुआ। तो प्रफुल्ल जी, इससे आगे बढ़ते हैं, आपने बात की कि कैसे अब भारत न केवल सॉफ्टवेयर बल्कि हार्डवेयर के क्षेत्र में भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, कि कैसे हम AI को और बेहतर समावेश कर सकें। पर जो तीन चार दिनों के इस पूरे कार्यक्रम में चार पांच शब्दों का जो बहुत भारत ने एक तरह से कहें तो नेतृत्वकर्ता के रूप में उनको बहुत आगे बढ़ाया, उसमें एक शब्द था AI का लोकतंत्रीकरण, उसमें था वैश्विक कल्याण के लिए AI के प्रति सामूहिक संकल्प क्या होना चाहिए, कैसे जिम्मेदारी पूर्वक देश AI का इस्तेमाल करें। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कैसे भारत का जो दृष्टिकोण है AI को नियंत्रित करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए, वो कैसे अमेरिका और यूरोप के जैसे देशों से भिन्न है।
जब कोल्ड वॉर के समय ये सारा डिजिटल स्पेस का इवोल्यूशन शुरू हुआ तो उसकी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू, कम्युनिस्ट कंट्रीज में इंटरवेंशन के लिए अमेरिकन कंपनीज ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, उसका एक साइड इफेक्ट के रूप में हम आज डिजिटल स्पेस देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं। 1950-60 के दशक में तो ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के रूप में हुआ था, तो आपके यूनिवर्सिटी की एकेडमिया की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन इसमें धीरे धीरे 8-10 बड़ी कंपनियों के, चाहे मेटा हो चाहे गूगल हो, इनकी एक मोनोपोली क्रिएट कर दी, डेटा ओनरशिप क्रिएट कर दी। अब हम NVIDIA का देखते हैं तो वो चिप बनाती है, तो या Huawei जैसी कंपनी है चाइना की, तो एक मोनोपोली इसकी क्रिएट हो गई। अब मोनोपोली हो गई तो इसके आधार पर कभी भी ये आपके डेटा को तो लेंगे, लेकिन उसके उपयोगिता आपको करनी है तो आपको उन पर निर्भर रहना है। मतलब आप कंज्यूमर तो हो, आप उनको रेडीमेड सारे शोध करने के लिए डेटा तो दे रहे हो, लेकिन उसका उपयोग आपके लिए नहीं है। ऐसे में भारत की यह भूमिका कि हमको यदि कहीं में AI को प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, कॉम्पिटिटिवनेस भी लाना है, नई अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करना है, तो हमको AI मैन्युफैक्चरिंग भी, AI के साथ साथ डेटा सॉवरेनिटी भी और AI का डेमोक्रेटाइजेशन भी, ये तीनों वर्टिकल्स पर हमको काम करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में ये मोनोपोलीज धीरे धीरे इस दिशा में जाएगी कि डेटा को लेकर आज डिवाइड बना हुआ है वो AI डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, विश्व फिर दो हिस्सों में किसी ना किसी रूप में बढ़ जाएगा। और लेकिन उसके साथ साथ जो परिणाम होगा कि आने वाले समय में प्रत्यक्ष मानवीय जीवन पर इसका क्या परिणाम हो रहा है, उसको लेकर जो भारतीय दृष्टि है, जो मानव को प्रकृति का हिस्सा मानकर वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि है, उस दृष्टि को हम कभी भी उसमें इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिटियरिंग का मोटिव तो हो जाएगा, बिजनेस वाला हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाला हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये सब है किसके लिए। इसलिए हमने जो थीम इसमें दी है कि हमको प्रोग्रेस के साथ साथ प्लैनेट का भी ध्यान रखना है, इस पृथ्वी का भी ध्यान रखना है, तो इसीलिए मैं मानता हूं कि ये हमने जो एक तरीके से इसमें एक बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है कि लगभग 2.5 लाख लोगों ने AI रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रतिज्ञा ली है
जी।
ये रिस्पॉन्सिबल AI कल जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट के भी बोलने में आया और प्रधानमंत्री मोदी जी के भी बोलने में आया कि AI शुड बी सिक्योर, हमारे खास करके बच्चों को और परिवार व्यवस्था को सिक्योर करने वाला भी AI होना चाहिए
जी।
ऐसे में AI के कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो ओपन होंगे, कौन से फीचर्स ऐसे होंगे जो रिस्ट्रिक्टेड होंगे, इसको लेकर भी एक सोचने की दिशा कम से कम इस संदर्भ में शुरू हुई है। इसके आधार पर हमको ये क्लियरली ध्यान में आता है कि ये भारत की दृष्टि है जिसके आधार पर हम केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए AI नहीं, केवल डेटा मोनोपोलाइजेशन के लिए AI नहीं, तो सही में सबके कल्याण के लिए, इसीलिए ये लोकतंत्रीकरण और सार्वभौमिकता की संकल्पना AI के संदर्भ में और डेटा सॉवरेनिटी के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाए।
बिल्कुल प्रफुल्ल जी, आप हमारे साथ जुड़े सुर्खियों में कार्यक्रम में और इतने विस्तार से इस पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में